नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। श्री मोदी ने उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार और एशियन विकास बैंक ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाबार्ड ने प्रदेश में शिक्षा और डेयरी विकास विभाग को अवसंरचना विकास के लिए 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और चंपावत में पोषण भी पढ़ाई अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। श्री मोदी ने आपदा राहत कार्यों में लगी केंद्र और प्रदेश सरकार की टीमों के सदस्यों से बातचीत कर उनसे जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री को आज राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। गौरतलब है कि इस मानसून सीजन में प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और टिहरी में भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। एशियाई विकास बैंक एडीबी और केंद्र सरकार ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत और जलवायु लचीले पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में प्रभारी अधिकारी काई वेई यो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुश्री मुखर्जी ने कहा कि एडीबी ऋण प्रदेश सरकार की उस नीति का समर्थन करता है, जिसके तहत राज्य को एक विविधतापूर्ण सभी मौसमों में पर्यटन के लिए उपयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में तैयार करना है और टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। श्री यो ने कहा कि यह परियोजना एक जल विद्युत झील के आसपास स्थायी पर्यटन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें रोजगार सृजन, आय में विविधता लाने और जलवायु दृढ़ता बनाने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। परियोजना के तहत प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक टिहरी में कई कार्यक्रम होंगे। इसका उद्देश्य बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा तैयारी के माध्यम से 87,000 से अधिक निवासियों और हर वर्ष आने वाले 27 लाख आगंतुकों को लाभान्वित करना है। बागेश्वर जिले में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक लेकर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले भर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत, जो कि आपके सेवा पर्व के अंतर्गत है, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जनपद के अंतर्गत वृहद अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जितने हमारे CHC हैं, PHC हैं और आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं, सभी जगह ये कैंप, इसमें जो है हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC में वृहद रूप से कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समस्त विभागों के द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे आयुष्मान आरोग्य केंद्र है, वहां पर भी ये कैंप रहेंगे।
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि अभियान में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एनीमिया, टीबी, मुख, स्तन व गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही स्वच्छता और पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्पेशली महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए कि भाई इसके तहत हम लोग उन लोगों की क्या करें, स्क्रीनिंग करें और ट्रीटमेंट करें। जैसे एनीमिया हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो एनीमिया की स्क्रीनिंग और ANC चेकअप हमारे हो, साथ में TV का जो प्रोग्राम्स है, NCD प्रोग्राम जिसमें कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर की स्क्रीनिंग हमारी हो, और RKS के प्रोग्राम के तहत हम किशोरियों को भी जागरूकता अभियान देते हैं कि स्वच्छता का वो करें और साथ में उनको सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, वो भी इसमें है। तो इसमें हमारे जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम है सब कवर। और ये दो टाइप के कैंप हम लोग को भी लगाने हैं, एक हमारे जो है विशेषज्ञ कैंप लगेंगे और एक हमारे जो है जागरूकता और स्क्रीनिंग कैंप लगेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास को सुदृढ़ करने के क्रम में प्रदेश सरकार को RIDF के तहत करीब 93 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा विभाग को बागेश्वर जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और चमोली जिले में राजकीय इंटर कॉलेज सिलपाटा के निर्माण के लिए 44 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा, जिससे इन क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों का दायरा और व्यापक होगा। वहीं डेयरी क्षेत्र में 48 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक की लागत से उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में आधुनिक 10 MT क्षमता के मिल्क पाउडर संयंत्र, 5000 लीटर क्षमता के आइसक्रीम प्लांट और 2 MT क्षमता के बेकरी यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना से प्रदेश की डेयरी प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और राज्य में ही मिल्क पाउडर बनाया जाएगा। इससे समीपवर्ती राज्यों से मिल्क पाउडर बनवाने का और लोडिंग अनलोडिंग का खर्च कम होगा, साथ ही स्थानीय उत्पादकों को बड़े बाजारों तक पहुंच में आसानी होगी। इस परियोजना के तहत डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा और निजी भागीदार द्वारा संयंत्र का संचालन निर्माण संचालन ट्रांसफर मॉडल पर किया जाएगा। चंपावत जिला मुख्यालय के गोरलचौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चंपावत विकासखंड की 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां भाग ले रही हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुपोषण से लड़ने के तरीके, बचाव, बच्चों में व्यावहारिक परिवर्तन और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसके तहत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण एवं पढ़ाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी जो वर्तमान में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पोषण एवं कुपोषण, टीकाकरण तथा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एवं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे, उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और यह निश्चित तौर पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है तथा आगामी जो पोषण माह है, उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण का डिजाइन किया।
चंपावत जिले में 10 सितंबर से 17 सितंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के नगरपालिका क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक सहित विभिन्न प्रकार के कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। अभियान के तहत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज लोहाघाट नगरपालिका क्षेत्र में श्रमदान और कूड़ा निस्तारित कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
आज मेरे द्वारा भी प्रातः लोहाघाट और चंपावत के नगरीय क्षेत्र से उनका भ्रमण करके स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, तो एक वृहद योजना भी सभी विभागों के लिए इसमें बनी है और स्वच्छता लगातार चलाए जाने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम में सभी विभाग और जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके सहयोग के लिए निर्देश जो है दिशा निर्देश कल सभी को दिए गए हैं। इस पर सभी लोगों को जनजागरूकता के माध्यम से भी कि सभी लोग इसमें अपना अपना सहयोग करें, नागरिक भी सहयोग करें और हम लोग जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत की परिकल्पना पर इसको खड़ा उतारने के लिए सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें।
रुद्रप्रयाग नगरपालिका को एक नए स्काई लिफ्टर वाहन की सौगात मिली है। इस वाहन का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रतीक जैन और नगरपालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्काई लिफ्टर वाहन नगरपालिका के कार्यों को और अधिक सुगम व प्रभावी बनाएगा, विशेषकर सफाई, विद्युत मरम्मत, ऊंचाई पर रख रखाव कार्य, होर्डिंग्स और सजावट संबंधी कार्यों में इस वाहन का उपयोग शहर की व्यवस्था सुधारने में मददगार सिद्ध होगा। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने कहा कि नगर पालिका रुद्रप्रयाग को ये आधुनिक वाहन मिलने से शहर में विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। श्री मोदी ने उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार और एशियन विकास बैंक ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाबार्ड ने प्रदेश में शिक्षा और डेयरी विकास विभाग को अवसंरचना विकास के लिए 93 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी और चंपावत में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।